মানে উপমন্ত্রী মানে এক চেলা, উপমন্ত্রী কৃষ্ণ কৌন হ্যাঁ মাবি উনকে উপমন্ত্রী কৌন হ্যাঁ ইয়ে জো আয়া উপমন্ত্রী উপমন্ত্রী ধন্যতম বার্তা তোমারে इसमें और होली में और कोई बात नहीं है, बस उन्हीं की बातें हैं, संधि की बातों को छोड़कर और कुछ नहीं, उसको भूल जाओ। फिर सो थोड़ी देर में और उनका दूसरा रूप वो चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, उसे प्रेम से बातें नहीं थी। और थोड़ी देर में वो फिर 10-20 मिनट के बाद देख के बड़ी प्रसन्न हो गई, पुनरागा प्रिय सा प्रिय सुता, अरे तुम चले गए, मैं तो तुम्हारे लिए बड़ी चिंता करी, मैंने तुम्हारा कोई भी प्यार नहीं किया, तुमने पानी के लिए पूछा नहीं, तुम क्या संवाद रहे, कुछ भी मैंने तुमसे आदर से बात नहीं की, मुझे बहुत छोड़ हो रहा है। हाँ फिर आ गए बड़ी प्रसन्न, मतलब उसमें प्रसन्न हो गई तो कैसी भावना होगी, वीरा में सबसे डूबी चिंता का होश नहीं है, शरीर का होश नहीं, कहाँ पर बैठी है, क्या कर रही है, कोई होश नहीं, ये सहज समाधि है। उद्धव जी देख करके दंग है, लोगों को समाधि होती है तो निश्चित हो निश्चल हो जाए, जड़वत हो जाए, और उनकी समाधि देखो उनसे लाख गुना अधिक। और आप तो फिर से भेज दिया, आप आ गए बड़े किम अनुरूप, मांग लो तुम क्या चाहते हो वही कर देंगे। तो वो भन भन किंग करने लगा थी, ओ, आप मानिए हमारे, क्यों हमारे प्रभु के दूत हैं ना, तो आप जो कहते हैं यही तो कर रहे हो ना, जैसे आपको प्रभु बुला रहे हैं इसलिए आप चलिए मुझे द्वारका। अच्छा हमको बुला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बुला रहे हैं हमको, नश कथम यशमान दुष्ट दंड पाप से जाना हमारे लिए संभव, हम तो कैसे जा सकते, सतत मुरसि सौम्य सिर बधूर सी कम सातम अस्त, अरे वहां पर बुलाए हैं हमको, हम जाएंगे किंतु बतलाओ तो जाकर के हम क्या करेंगे, अपने बस्तक्षल पर अपनी प्रिया मथुरा वासियों को या द्वारका वासियों को तो बैठाया है, और हम जा करके क्या करें, हमको और भी कष्ट देने के लिए बुला रहे हैं, हम कैसे जाए बतलाओ, तो तुम ही बतलाओ, तुम्हारे ऊपर में छोड़ दे, कैसे विरह अनुतप्त होकर के वो बतला रहे। अभी वत मत को आर्य पुत्र नाश्ते, अच्छा ये बतलाओ क्या अभी वो हमारे प्रिय अपिवता मधुपुर या आर्य पुत्र आत्मनाश, वे आर्य पुत्र हमारे जो परम प्रिय हैं वो क्या मधुपुरी में ही हैं, मधुपुरी आ गए हैं, क्या मतलब
उज्जैन गए थे,
उज्जैन से पटली तक आ गए हैं, यदि मधुपुरी में ही हैं तो ये बतलाओ, अब वो आधे रास्ते तक इधर बंद में आ रहे हैं, तुम आगे आ गया भेज दिया उन्होंने कि मैं भी आ रहा हूँ, तुम आगे चल करके कहो जो वो आ रहे हैं, इसलिए वो इस भावना से कह रहे हैं अभी वो तम या आर्य पुत्र और मथुरापुरी में है, वो क्या आधे रास्ते तक चले आए, उन्होंने कहा था जो परसों आए हैं तो परसों तो हो गए, अब यही तुम बतलाने के लिए आए हो, जिन हमारे तुम्हारे प्रभु आधे रास्ते तक कहाँ तक ब्रह्मांड ब्रह्म सरोवर ब्रह्म के पास तक आ गए, अब क्या हम लोग उनके आगवानी के लिए आगे चले, इस प्रकार से भावना कर रहे हैं स्मरत सर। अच्छा कभी भी वे स्मरण करते हैं हमारा, स्मरत सर पितृगृह है, पितृगृह का स्मरण करते हैं, कैसे कैसे हमने उनका उन लोगों ने हमें आदर किया, पिताजी ने मैया ने और साथी कुटी ने कैसे हमको आदर, ये क्या कभी चिंतन करते हैं स्मृति, अपने बंधुओं को सखाओं को क्या कभी कभी सोचते हैं कि श्रीदाम हमारे लिए कैसा हो, सुबह जो उनके बिना प्राण नहीं उसका रह सकता था, वो मेरे बिहन मेरे बिना वो कैसे उसकी स्थिति होगी। और क्या हम लोगों की इन दासियों को कभी भी स्मरण करते हैं? स्वकथा किम करीम नाम गृणीत किसी भी प्रकार से। और मथुरा की ये जो रमणियाँ हैं मेरी बड़ी सुंदर से उनको बड़ी सेवा करती, उनको सेवा नहीं करने आता था, इस प्रकार से भी गौण रूप में भी विरोधी भाव से भी इतिहास स्मरण करती। अजी तुम लोग इतना सुंदर पंखा देती हो, थकती हो, अरे वो ग्राम की गो ग्वारियाँ क्या जाने उनको पंखा देने नहीं आता, कभी फूल का कोई माला ले आई, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, उन गोपियों को ऐसा नहीं आता था। क्या इस रूप में भी याद करते हैं अथवा उनकी मालाओं को देखकर जाते हैं, अरे ये बेकार की माला, उनकी किसी सुंदर सुंदर मालाएं कैसे मधुर रूप में पंखा जलती, कैसी सुंदर पान की बीड़ी लगाती थी, क्या किसी रूप में भी अन्य रूप में या व्यतिरिक रूप में किसी प्रकार से हमारा क्या वो आ रहे हैं? क्या वो भुजा अगर उस गंध, जिनकी भुजा में सब समय अगुरु की गंध है, वो क्या हमारे सिर पर रखेंगे? अर्थात अभय देंगे जो आओ सर मैं कभी भी नहीं कहीं जाऊं, इसका ये सिर बाहर देना मैंने क्या
अभय देना,
तुम चिंता मत करो, रो मत, व्याकुल मत हो, हम कभी भी तुम्हें छोड़ करके नहीं जाए, ऐसा कर करके हमारे सिर पर क्या हाथ दें। इस प्रकार से रोती हुई विलाप करती हुई मुझे तो वर्षित पड़ी और उद्धव जी देखते रहे, इतना अद्भुत प्रेम आज तक हमने कभी नहीं सुना, आज कृष्ण की कृपा से इन गोपियों के पास में आया, हे गोपियां तुम्हारा यह विरह हमारे लिए वरदान है, आज तुम्हारी कृपा से आज मैंने समझा कि प्रेम नाम की क्या चीज है और किसको संजोग और किसको विपरीतम कहते हैं, आज तुम्हारी कृपा से ये सब कुछ मिला। साधक में इतना न हो किंतु ये सप्तम सोपान में भगवान के प्रति ऐसा यदि किसी को विरह हो तो उसको कोई भी संसार की बातें अच्छी लगेंगी, खाना पीना सोना आराम करना गृह घर द्वारा बाहर भीतर कहीं नहीं उसको अच्छा, यदि किसी को ऐसा थोड़ा सा भी हो जाए तो संसार के लोग इसको समझेंगे इसके अंदर में कैसी तीस है कैसी भुजा भावना है, उसको संसार के लोग नहीं समझेंगे, समझने वाला वही कृष्ण है या ऐसे भावना वाले जो गुरु वैष्णव हैं वो लोग कहेंगे ये एकदम पागल उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये सब का लक्षण जो उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि में जो दिया गया है साधक लोग उसको देख करके इसको विचार करते उनकी इस स्थिति का जन जगन्नाथ वल्लभ नाटक में हमारे राय रामानंद जी ने राय रामानंद जी का जगन्नाथ वल्लभ जो नाटक है वो हमने देखा जब मैं आया था पहले एक पुस्तक छोटी सी हमने उलाट करके पेज उसको रख दिया जिसमें कुछ है नहीं, किसी को भी आप लोग भी देखेंगे पढ़ेंगे आप लोगों को तनिक भी रुचि नहीं है, वो किसके लिए है जब ये उज्ज्वलिनमणि और भक्ति रसामृत का सिंधु का और भागवत का और सब शास्त्रों का भाव समाप्त उदाहरण समाप्त हो गया, कुछ देने के लिए नहीं रह गया, अब तक तो दे रहे थे भागवत का श्लोक, सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है गोपियां, गोपियों में कौन सबसे अधिक, तो ये सब वर्णन करते थे, अभी तक बतला रहे थे सखाओं के लिए वात्सल्य के लिए
सबके लिए,
सबके लिए भागवत का श्लोक दिया, कहां 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 का श्लोक दिया, गोस्वामी ग्रंथों का सब दिया। और जहाँ पर अपने एक भाव का जो सबसे निराला
प्रेम विलास की बात है,
उसका कोई उदाहरण नहीं मिला, तो उसका उदाहरण अपने जगन्नाथ बल्लभ नाटक से। इसलिए ये कैसा है समझो, भक्ति रसामी सिंधु में भी इसका पीछे से वर्णन उसका किया गया
पहले ही राज
ये सब। तो उसी के लिए ये करें सखी, फले धैर्य धर। इसे श्लोक का अनुवाद दे रहे हैं जगन्नाथ बल्लभ का, बहुत कठिनिष्ट है हमको। तो करें सखी, सखी बोले धैर्य धर, आशीबे नगर भर व्याकुल हईले पीवा फल। राधा बोले उहे सखी पथयार नहीं लखी, प्रेम छेद रोग जे बाटिल। सखी तुम कहती है धैर्य धारण, अच्छा धैर्य धारण करना के लिए कौन कहेगा? जिसको अभी कुछ होश है वो तो कहेगी, और जिसको होश ही नहीं है वो कहेगी। राधा जी कहेंगे जो धैर्य धारण करो, नंदलिता भी शाखा और दूसरी सखियां कहेंगी, इनको भी होश नहीं रहेगा तो कौन कहेगा? नीचे वाली सखियां वृंदा जी धैर्य धारण, औरमासी जी धैर्य धारण, सखियां भी कोई, अंततः मंजरियां जो सखियां वो तो कभी धैर्य नहीं धारण, बस उनके उपस्थिति को देखकर के केवल रोए। इसके कहती हैं सखी बोले धैर्य धारण, आशी बेर ना करो, धैर्य धारण करो थोड़ा सा, अब तो कृष्ण आएंगे। व्याकुल हईले की बात, अरे व्याकुल होने से क्या होता है, जल्दी आ जाएंगे, थोड़ा सा धैर्य तो धर, अभी कल आ ही जाएंगे, कल सवेरे ही आ जाएंगे। राधा बोले सुनो वह सखी पथ आर नहीं देखी, प्रेमच्छेद रोग जी बड़ी। राधा की कहती है यदि आज ही मर जाओ तो, अभी मर जाओ तो फिर क्या होगा, वो आकर के ही क्या हो करेंगे, हमारा रोग तो इतना बढ़ गया ना, ये मिनट मिनट का कोई ठीक नहीं, अगला मिनट अभी आएगा कि मर जाए। इसलिए कह रही है और पथ नहीं देखता, कोई पति नहीं मुझे सूझा है, प्रेम छेद रोग जी बढ़ गया, ये बढ़ गया, इतना रोग बढ़ गया अभी, अब किस मुख में प्राण निकल जाएंगे, कोई भी ठीक नहीं, आकर के भी मुझे मैं देखूंगी ना, बोले
प्रेमच्छेद माने प्रेम में विरह भी छे,
ये रोग इतना बढ़ गया कि फिर उसे बचने की कोई संभव, कब मर जाऊंगी, कब क्या हो जाएगा, कोई ठीक नहीं, आ करके देखेंगे न मैं ही देख सकूंगी। लचा पचाई थे हरी ना शिला मधु पूरी, प्रेम ना पूरी लय स्थान स्थान बुझी लो स्थान, लचा बात चाहिए लता को बचाने के लिए श्री हरि नाशिल मधुपुरी, प्रेम ना बुझी
मधुपुरी हृदय कृष्ण आसले ना लता माने यही गोपी लता मजा वाली
माने उनकी उनका शरीर कृष्ण मधुपुरी से नहीं लौटे
गोपी जने तोनु लता बजाई वाली जन में कृष्ण मधुपुरी हृदय आसले
प्रेम ना बुझलो ना स्थान स्थान
स्थान स्थान
और प्रेम ने कोई स्थान स्थान नहीं देखा, क्या नहीं देखा, ये नहीं देखा जिसे इनको प्यार करना चाहिए कि नहीं, इनके साथ में सख्त भाव रखना चाहिए कि नहीं, अस्थान में लग गया। यदि इतने निष्ठुर है हम लोग जानते थे इनसे कभी भी कदापि निष्ठुर कारण में प्रेम, ऐसे निष्ठुर कारण के साथ में हमने प्रेम किया, पड़े गेलाम महाभ्रम में, महाभ्रम में पड़ गए, समझा कि महासमुद्र सुशीतल समुद्र या नदी होगी, जब उसमें गया तो देखा क्या,
अचल बोलिया उचले चुड़ी में पड़ी
एकदम आग के कुंड में गिर गई, और सोचा जी ये बहुत सुंदर वन प्रांत पर्वत होगा, तो देखा क्या कहाँ नीचे चला गया, क्या पृथ्वी लगा दिया ये घर बांधा, पृथ्वी के लिए ये घर बांधा। घर बांधा माने क्या, प्रेम करके ये गोपियों कृष्ण के साथ में हमने घर बांधा संसार, और आग ने पूरिया गया
बिना रुपये अग्नि में
जल करके वो खाद हो गया। महाप्रम में पढ़ करके वहां पर निष्ठुर काम के प्रेम में जीत कर मदन तहाते थाने बाण, इधर में मर रही हूँ उधर में बहरिया बाण मार रहा है और जल्दी से मार, दुख ना बुझ लो सखी, सखी तू हमारा दुख को नहीं समझ रही, हमको सांत्वना दे रही है, तुम्हारे अंदर में यही दुख होता तो तुम हमको सांत्वना नहीं देती। जीवन चंचल तुम नहीं समझ रहे, जीवन चंचल माने क्या है, अभी अभी क्या हो जाएगा ठीक नहीं, प्राण पखेरे हो जाएंगे, ताते ए जवन शोभा पाए आरखी नागर मणि एब्रजे आशीबे धर्मी हाहा पीजी की हबे। अब क्या फिर लौट करके आएंगे, ये कह करके सिर पर हाथ देकर के बस, ये गोपियों का गिरा भाव, ऐसे गोपियों का की कथाओं को सुन करके तब ऐसा भाव किसी साधक को प्रेम की स्थिति में भाव की स्थिति का दिए आज दैपायनो तिरह कातर्यादिभावोऽस्तीतमेतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं महान् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञायराधिकं मां चरणं संज्ञां साधम भजन रहस्य। कहते हैं कि ऐसे हम लोग भगवान का नाम करते हैं, भगवान की कथाओं को भी सुनते हैं, साधन भजन भी करते हैं, किंतु इनमें किसी के प्रति विशेष मन नहीं लगता, रुचि नहीं है। तो पहले जिस श्रद्धा को लेकर के साधक आता है, यदि उसमें रुचि न रहे, मन न लगे, तो धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे उसके प्रति आकर्षण दूर हो जाता है और फिर उसके पास प्रति विश्वास भी घट जाता है और फिर उदंड आदमी हो जाता है, एकदम उदंड हो जाता है, यह समझता है कि ये भक्ति यथार्थ में कुछ है नहीं, ये एक तरह से दूसरों को बेवकूफ बना करके उनको ठगने के लिए ये किसी का एक मार्ग समझ लेता है, और जिनको यथार्थ श्रद्धा है, उपयुक्त उपाय से चलते हैं, साधनों से अनर्थ निवृत्ति की चेष्टा करते हुए अपराध और अनर्थों से बचकर साधन जैसा के लिए लिखा गया है वैसे साधन करते हैं तो वो बढ़ते चलते हैं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मन शिक्षाष्टक के प्रथम श्लोक में ही लिखा, श्रद्धा उत्पन्न होने पर भी, चाहे वो श्रद्धा लोभमयी हो अथवा शास्त्र शासन में ही हो, लोग वो श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, होने पर भी उचित रूप में वैष्णव के अनुगत्य में उपयोगी साधन के रूप यदि नहीं करेंगे और स्वतंत्र होकर के ये सब करेंगे जैसा हमारा मन चाहता वैसा, तो धीरे 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 उस लाइन से, उस समय यदि लाख भी नाम किया जाए एक लाख भी ना वो नाम रक्षा नहीं कर सके। धीरे धीरे उसके प्रति भी आकर्षण दूर हो जाएगा, नाम की भी अवज्ञा होने लगेगी। और धीरे धीरे इससे तो क्या होता है नाम करने से, इतना दिन तो नाम कर लिया। जहाँ पर ब्रह्मा जी के कल्प से एक कल्प दो कल्प दस कल्प तक भजन करने पर जाकर के तब प्रेम की प्राप्ति हुई, हम लोग उसको दस पांच वर्षों में ही उसको हम लोग सहज रूप में पा लेते हैं। इसलिए श्रद्धा बनी रहे और उपयुक्त पद्धति का अवलंबन कर वैष्णव और गुरु जी के अनुगत्य में हम साधन भजन करते चले। जिस उपाय से इन्होंने भजन का रहस्य बतलाया, कैसे भजन होता है तो उसमें मन लगेगा, इसलिए इस पुस्तक का नाम क्या रखा,
भजन रहस्य।
भजन में क्या रहस्य है, जिससे कि साधक को रुचि उत्पन्न होकर के धीरे धीरे अनर्थन वृत्ति के बाद में निष्ठा, इसके बाद में रुचि, इसके बाद में भाव, इसके बाद में प्रेम का उदय। और यदि इस यथार्थ पद्धति का अवलंबन न किया जाए, भजन के रहस्य को नहीं समझा जाए तो क्या होगा, कुछ दिनों में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। और लाखों लोगों को हम देखते हैं बहुत दूर तक अग्रसर होकर के भी प्रभुपाद जैसे सिद्ध आचार्य को भी पा करके बड़े बड़े दिग्गज विद्वान और लेखक और सब लोग कहाँ उड़ गए, भक्ति भी कहाँ चली, गुरु को भी छोड़ दिया, वैष्णव को छोड़ दिया, सतपथ को छोड़ दिया, भागवत पथ छोड़ दिया, और जो कुछ कर रहे हैं उसी को भक्ति मान रहे हैं। इसलिए हम लोग भजन के रहस्य को जान करके भजन में प्रवेश करके भजन करेंगे तो धीरे 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 हमारी रुचि आएगी, रुचि से फिर आसक्ति आएगी, आसक्ति के बाद में क्रमशः भाव आएगा। भाव आने पर विशेष डर नहीं, तो अभी कुछ कुछ डर है, 5% हो सकता है डर, और 99% गारंटी रहेगी कि भगवान के भजन में हम लोग कर। इसलिए बतला रहे हैं निरंतर भागवत का सेवन हो, है ना, क्या निरंतर भागवत का
नित्यम भागवती,
नित्यम भागवत सेवया, भगवती
नष्ट प्रायसु अवधेशु नित्यम भागवत सेवया भक्तिर भवती
भगवती नैष्ठिकी,
भगवती उत्तम श्लोके,
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती
नैष्ठिकी, तब नैष्ठिकी भक्ति आएगी भाई। जब तक नैष्ठिकी भक्ति नहीं आ जाती, समय ऐसा आने पर भूखा भी रहना पड़े 10 दिन, किंतु भक्ति बढ़ती जाए। संसार के लोग अपमान करें लाख, किंतु भक्ति बढ़ती जाए। जैसे त्रिदंडक भिक्षु को अपमान किया कितना, हम लोग की इस अवस्था में कोई अपमान कर दे तो हम भक्ति छोड़ करके चले जाए। यदि रोटी मांगने के लिए गए और रोटी मिल गई हमें, और किसी ने रोटी का बर्तन उसमें टट्टी कर दिया, पेशाब कर दिया, और उसके सिर पर वही चीज़ उड़ेल दिया, टट्टी का बर्तन रख दिया और अपमान करता है, तो हम लोग भजन करेंगे मथुरा में रह करके या कहीं छोड़ करके चले। किंतु त्रिदंडी भी चुका ऐसा था, छोड़ा नहीं, आज ये हमारे कर्मों का फल है या भगवान की कृपा है, हमको ये नम्र और ऐसा योग्य बनाने के लिए भगवान ने अनुग्रह करके ऐसा समय उपस्थित किया है, हम लोग की भक्ति डगमगा जाएगी, उनकी भक्ति नहीं जाएगी। इसीलिए हम लोगों को उनका गुरु भी ऐसा ही होगा, ऐसे ही वो नहीं हो गए होंगे, गुरु और वैष्णव का अनुग्रह ऐसा। इसलिए इस भजन के रहस्यों को जान करके हम लोग भक्ति में प्रवेश करने की चेष्टा करें। कल हम लोग बतलाया, हम लोगों ने बतलाया, भक्त विनोद ठाकुर जी ने बतलाया, भगवान के प्रति जो विरह है, विप्रलम्भ भाव, वो साधकों के भजन में सहायक होता है। सब प्रकार के विप्रलम्भ नहीं, केवल पूर्वराग वाला और
दुर्प्रवास,
बीच वाला जो है मान वाला अप्रेम बचे रहे, ये सब जीवों के लिए, साधक के लिए ये संभव, इसलिए उसका कोई उदाहरण नहीं दिया। इन दोनों का उदाहरण दिया। पहले दो तीन दिन हम लोगों ने उदाहरण दिया पूर्व पूर्वरक्षा संबंध में गोपियों के भावों को, और पीछे से गोपियों के ही भावों का दिया सुदूर प्रवाह। अब ये सुदूर प्रवाह प्रवास के संबंध में ही ये भागवत से दे करके, और फिर ये बिल्व मंगल के कृष्ण करणामृत से उसको दे। कृष्ण विरह की व्याकुलता का वर्णन, भक्तों को कृष्ण के विरह में कैसा व्याकुल कैसी व्याकुलता होनी चाहिए। यहाँ पर कृष्ण करणामृत में राधा जी की उक्ति के द्वारा दिख रहा है, यह है लाइट पोस्ट। लाइट पोस्ट माने क्या? हमारे उद्देश्य की का चरम बिंदु है। अभी हम लोग वहाँ से सैकड़ों मील दूर हैं, किंतु हमारा लाइट पोस्ट अभी से ठीक होना चाहिए, उसी लाइट को देखकर के यहाँ। लाइट पोस्ट किसको कहते हैं? समुद्र में पहले जहाजों के लिए मार्गदर्शन के लिए लाइट पोस्ट बीच बीच में रखे जाते हैं। यहाँ क्या चीज़ है? यहाँ पर्वत है, यहाँ पानी कम है, यहाँ पर खतरा है, इसके इसलिए लाइट पोस्ट को देख करके बड़े बड़े जहाज चलते हैं। अभी भी वो लाइट पोस्ट हमने पुरी में देखा है, पुरी में है, विशाखापट्टनम में है, बॉम्बे में है, ऐसे जो उसको कहते हैं लाइट। है कितना दूर वहाँ से? काफ़ी दूर, 8-10 माइल दूर है, वहीं से लाइट पोस्ट दिखे। ऐसे ही हमारे जीवन का लाइट पोस्ट ये सब क्या है? उनका प्रलाप राधा जी का है। उसमें कह रहे हैं कि कृणुम कश्य ब्रूम कथक कृतमाशय कथयत कथमन्या धन्या महो हृदय सह मधुर मधुस्मेराकारे मनोनयनोत्सवे कृपण कृपणा कृष्णे कृष्णां चीरं बतलं व्यते। जब तक इनके भावों को न जाना जाए तब तक ये कुछ इसमें मालूम नहीं होता। इन्हें साधारण लोगों के ये गम्य नहीं है, बोधगम्य नहीं। भागवत में भी यदि उसकी सरस टीकाएँ नहीं होती तो हम समझते हैं कि कोई भी इसका अर्थ नहीं समझता, और कोई इसकी लोकप्रियता इतनी हुई है इतनी नहीं रही, और श्रीमद्भागवत को विश्व का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं मानेगा। ये टीकाओं के ऊपर है, किंतु उसमें भाव भी है। टीकाकारों ने, भक्तों ने, रसिक जनों ने उसकी उपलब्धि की भजन करते करते, व्यास जी ने उसकी उपलब्धि की, और व्यास जी के बाद में उन्होंने जब सुखदेव को बतलाया तो वो चमत्कृत हो गए, और निर्जन में ब्रह्म की उपासना करना छोड़ करके इसी के लिए केवल आ गए उनके पास में। उनका विधिवत अध्ययन किया है, और परीक्षित सभा में उनको भी वर्णन करने के लिए दिया है। क्यों दिया गया? इसका कारण था, एक तो बच्चे की आवाज कैसी होती है, बड़ी सुरीली ना, तो ये तो अभी 15-16 वर्ष के बच्चे सुरीली आवाज, और वर्णन करने की शैली, वर्णन करने की शैली भी वैसी। एक बात उसी बात को एक व्यक्ति कहता है और उसी बात को दूसरा व्यक्ति कहता है, शब्द वही है किंतु उच्चारण करने की ऐसी शैली है जिसे आदमी मुग्ध हो जाते हैं। इस तरह से सुखदेव की का मुख सुरीला स्वर कंठ, वर्णन करने की शैली देखने में बड़े खूबसूरत, कभी बच्चे हैं ना, बच्चा जिस बात को कहता है सभी लोग आकर्षित हो जाते, और तब कभी अब अनुभव भी किया है अपने पिताजी से, इसलिए पिताजी ने कहा जी बेटा तू ही बैठ तुम सुनाओ, और मैं सुन करके देख रहा हूँ जे तू कैसा बढ़, बस अपने सामने ही इनको बैठा दिया और वो बढ़। ऐसे ही ये शब्द ये हैं। बिल्व मंगल जी बड़े रसिक हैं, बहुत रसिक भक्त हैं, पहले से ही वो उनका कुछ ऐसे ही टेंडेंसी है स्वरूप से ही, इसलिए उसके प्रति उसके राग पर स्वर पर सौंदर्य पर मुग्ध थे, चिंता किंतु यह उनका विकृत स्वरूप था, किंतु विकृत किसका स्वरूप था? उनके शुद्ध स्वरूप का ये विकृत, किंतु ऐसा ही था, इसलिए उसमें कुछ पूर्व जन्म का कुछ ऐसा संस्कार था जो उसके कीर्तन के माध्यम से, उसके वर्णन के प्रसंग से, गानों के संगीत के स्वर से वो धीरे धीरे आकर्षित हो गए और वो उन्नत होने लगा। इसलिए अंत में उसको शिक्षा गुरु माना है।
वृंदावन विजय,
अब वो वर्णन कर रहे हैं, वर्णन करते 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 करीब करीब 42 ना कितना श्लोक,
42वां श्लोक
करीब करीब बीच का श्लोक उसमें कह रहे हैं। पहले उन्होंने पूर्वराग का वर्णन किया, इसके बाद में मिलन का, इसके बाद में और सब चीजों का वर्णन किया है, और यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं किस चीज का, मिलने के पश्चात में विरह का वर्णन कर रहे हैं। लीलाओं का सब में क्रम है, जैसे भागवत में क्रमानुसार सब चीजों का वर्णन है, इसमें भी उसी तरह से वर्णन किया। राधा सुधा निधि में किसी क्रम से सब चीजों का वर्णन है। हमारे रूप गोस्वामी की पद्यावली है, नाटक नहीं पद्यावली संग्रह, उसमें भी ऐसे ही एकदम भगवत तत्व, इसके बाद में नाम तत्व और भक्त तत्व, भक्ति तत्व, इसके बाद में कृष्ण के स्वरूप तत्व, नाम के तत्व पर दिखते, और अंत में फिर प्रेम के संबंध में अभिशाप वासुक सज्जा इत्यादि ये सब का वर्णन करते 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 वो सब का वर्णन, अंत में विरह का भी वर्णन। तो यहाँ पर इनके विरह का वर्णन ये कर, हम लोगों का विरह ही यहाँ पर काम है। किम हो करुणुमा, मैं क्या करूँ, राधा जी विरह में तड़प रही और बतला रही, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ, अपने दुख की बातें मैं किसे कहूँ। कृतम कृतम आशया, ये हमारी जितनी आशाएं थी, यहाँ पर आशया है ना, कृतम कृतम आशय, हमने बड़ी लंबी आशा रखी थी। क्या लंबी आशा थी, बहुत दिनों की, वो आशा क्या थी, कृष्ण को पाकर के हम सुखी हैं, इसलिए इसके लिए कृतम किया हमने प्रेम, किंतु वो आशा भी कृतम धरी रह गई, आशा पूरी नहीं, वो आशा जैसे कि तैसी खड़ी रह गई। कथम यत कथम अन्य, कथयत कथम अन्य, मैं अन्य किसको ये बातें कहूँ, कहने से क्या होगा, सुनी अच्छी लगी है लोग सब बांट न लगी है, वो माने क्या, हमारी बातों को सुनकर के दुख को ऊपर से बड़ा दुख है, और दूसरे से जा देखा ना उसको, देखो तो चरित्र से भ्रष्ट होकर के किसके लिए ये क्या कर रही है, दिन रात उसी की चिंता, और कोई काम नहीं है उसको, इसलिए लोग क्या कहेंगे, कोई कहेंगे अच्छी लड़की है, कोई कहेंगे ये दुष्चरित्र है, कोई कहते अपने पति को छोड़ दिया इसने, कोई कुछ, इस तरह से सभी लोग कहें। आज रहने तो आज यहीं तक रहे। वृंदावन बिहारी कथम अन्य, कथा तो कथम अन्य, ओ मेरी बातों पर कौन विश्वास करे, तुम तुमको और कोई बात नहीं है सखी, अरे ऐसी कोई बात कहो जिसे कि हमारा मन दूसरी तरफ में लग जाए, इसके अतिरिक्त कृष्ण के विरह की अतिरिक्त कृष्ण चले गए, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वो हैं, इसके अतिरिक्त तुम्हारे कहने के लिए और सुनाने के लिए, सुनने के लिए और कोई भी बात नहीं है, ऐसा बात करो जो हमारा मन इधर से उधर हो जाए और इनकी चिंता ही दूर हो जाए। अपन जी से देखो एक बात, मन है ना, मन में कोई चीज हो तो उसको मन में से निकाल दिया जाए, किंतु मन ही किसी चीज में चला गया, उस चीज ही में चला गया, तो फिर क्या करें? आ रहा है समझ में? मन के अंदर में कोई चीज हो, हमारे घर में चोर आ गया, चोर को हम भगा देंगे अकेला, छोटा सा चोर, किंतु हमारा घर ही यदि चोर के यहाँ पर पहुंच गया तो फिर इसमें क्या किया? तो कथम आशाया कथम धन्याम हो हृदय सह,
हृदय सह।
अरे उसमें तो वो शयन कर रहा है ना, कहाँ? वो मन में। और मन में शयन करने के वजह से वो कहीं जा ही नहीं सकता, उसको निकालना सहज नहीं है, वो वहीं पर है, अपने तन में हो गया है वो हमारा मन, इसलिए वो वहां से जाएगा नहीं। मधुर मधुर स्मेर आता है, वो कैसा सो रहा है? मधुर मधुर स्मेर आकार, मधुर मधुर स्मित, स्मेर माने कहते हैं
स्मित हास्य,
स्मित हास्य। नाना मनो नयन उत्सव, मन में नाना प्रकार के नयन उत्सव, नयन समय नयनों का उत्सव, मैंने देखने में अपूर्व सुंदर आंखों के लिए ये उत्सव, उत्सव किसको कहते हैं? जो हमारे आंखों को अच्छा लगता है और मन को भी अच्छा लगता है उसको कहते हैं उत्सव। तो हमारे नयन के लिए और मन दोनों के लिए ही कृष्ण का दर्शन ही, उनका मिलना ही उत्सव है। त्रिपर्ण त्रिपर्णा कृष्णे कृष्णा चिरं वतलम्बते, कहते हैं कृष्ण हृदय में सोए हैं। कैसे? और मधुर मधुर सोया नहीं है, स्मित रूप में हास्य कर रहा है और नए नए रूपों में उसकी सुंदरता बढ़ रही है। हमने कृष्ण को दर्शन करने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए कितनी नई नई आशाएं की। जैसे हमने बीज लगाया उसमें अंकुर हुआ, फिर अंकुर होने से फिर उसमें पत्ते लगे, पत्ते से कोमल कोमल लताएं निकली, फिर धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा, उसमें धीरे धीरे फिर मंजरी फूल, इसके बाद में फल लगे। कहते हैं ये मन अंकुरित हो रहा है। नहीं नहीं कैसे? एक अंकुर निकला, फास की काट दिया या उस वहीं पर, फिर दूसरे तरफ से फोड़ करके 10-20 दुर्बा की घासों में अंकुर निकल जाते, ऐसे आशाओं का तो अंकुर हो रहा है, किंतु उसमें कोई फल की कोई गंध भी नहीं, केवल अंकुर ही अंकुर। मैंने कह दो चीर बासा कृष्ण लक्ष्मी बारे, कृष्ण की, कृष्ण को देखने की लालसा आशा हृदय में बड़ी चपलता के साथ में अंकुरित हो रही है, किंतु ये आशा चिर दिन की रह ही गई, उसमें फल कोई नहीं लगा। से आशा कृपण असम, ये आशा कभी पूरी नहीं। उसी को कृष्ण करणामृत में कुछ भाष्य में दिया गया है, उसको हम लोग थोड़ा सा अवलोकन करें। हाय हाय इसका भावार्थ दे रहे, क्या कहूं, किससे कहूं? अब दर्शन की आशा रखना भी व्यर्थ, वो जो अंकुरित हो रही थी अब आशा करना भी। अच्छा फिर कोई दूसरी बात पूरा शुरू करो, आरंभ करो, पर कैसे करें? हृदय में तो वही छिपा है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है, हृदय में स्वयं है वही है, कैसे इसको भुला? जो चीज यहीं पर है उसको कैसे भुला? हाय वे मधुरा अति मधुर मुस्कुराहट से युक्त आकार वाले, मन और नैनों का आनंद देने वाले श्री कृष्ण, मेरी कृष्ण के प्रति मेरी दर्शन की लालसा उत्तरोत्तर कम नहीं हो गई। कह रहे हैं है प्यारे कृष्ण के दर्शन तो हो ही नहीं रहे, राधिका जी सोच रहे कृष्ण चले गए मथुरा। कभी वो सोचते हैं कि गोचारण करने के लिए गए हैं, कभी आए, कभी सोचते हैं कि ये दोपहर का समय है, शाम को, फिर सवेरा होता है तो भी नहीं। कहते हैं कि दर्शन की लालसा तो बढ़ रही है, तृष्णा लालसा बढ़ती जा रही, किमुह कृणुमा, अब मैं क्या करूं, कश्य ब्रूमह, किससे कहूं, कहना भी कठिन है, और ऐसा कौन है जो इस दर्द को मिटा सके, किसे कहूंगी ये कृष्ण के दर्शन में प्राण और निकल गए, कोई क्या करेगा, कोई कर तो सकता नहीं। ये विचित्र ऐसा है रोग, रोग विचित्र ऐसा है, एक बार यदि रोग लग गया तो मिटने का नाम नहीं, बढ़ता ही जाएगा। कोई भी रोग होता है तो दवा खाने से कुछ कम हो गया है, कहीं नुकसान, किंतु कृष्ण दर्शन की जो लालसा है, कृष्ण दर्शन को प्यासी आँखिया बस आशा ही लगी रहती है। विचित्र रोग है, एक बार जिसको लग गया, हम लोग भी उसी के पथ पर बढ़ रहे हैं, रोग कोई भगाता है, रोग हम लेने की चेष्टा कर रहे हैं, एक बार लगता है तो छूटता ही नहीं। पहले नहीं समझी थी, अब समझी, पहले तो सोचा था बड़ी सुंदर आशा है, और आशा करती गई और प्रेम बढ़ाती गई, किंतु अब समझ, तुम्हें दयालु कौन कहता है, सब झूठे हैं, जो दयालु भगवान कृष्ण को कहते हैं वो सब झूठे हैं। कौन कहता है कि तुम करुणा के सागर हो, तुमको रसिक से रखा, तो क्या रसिक कहना भी भूल है, कि तुम रसिक पर हो, नहीं कह रहे, रसिक कहना भी, ब्रश से लौट करके उद्धव जी किसी को कह रहे करुणामयी रसिकता है तुम्हारी सब झूठी, तुम करुणामय हो, रसिक हो, यह सब कहना तुम्हारा सब बेकार झूठा है। जब ही ज्यों नहीं लखी तब ही लौ बांधी मुठी, जब ही ज्यों नहीं लखो तब ही लौ बांधी मुठी, मैं जानो प्रज जाई के तुम्हारो निर्दय रूप, जो तुमको अवलंबही वाको में लोग करें। देखो तुम्हारी ये जो रसिकता है वो सब झूठी है। उद्धव जी लौट करके ब्रज से कृष्ण को बतलाया, मैंने पहले नहीं समझा था मथुरा में रहते समय, तब तो मैं जानता था कि हाँ तुम्हारे जैसा करुणा सागर और रसिक कोई विश्व में है ही नहीं है, ये मेरे मुट्ठी बंदी थी, मधी मैंने पक्का विश्वास था, किंतु मैं ब्रज जाने के बाद में मुझको इस चीज का पता चला कि तुम्हारा कैसा निष्ठुर स्वरूप है, तुम एकदम निष्ठुर स्वरूप, रसिक क्या, रसिक भर क्या, रसिक ही तुमको कहना ठीक नहीं, जो तुम्हारा अवलंबन करता है उसको तुम मेलो कूप में, कूप में यह कौन धर्म है, ये नंददास सूरदास के सब छ अष्टछाप में से एक, सच कुछ तुम बड़े निष्ठुर, कितनी रोई कितना गाया न जाने कितनी अभिलाषाओं को हृदय में संजोए बैठे रही, लंबी प्रतीक्षा में अगणित साधन किए तुमको पाने के लिए, तुम्हारे दर्शन की रोज भीख मांगते मांगते वो भी समाप्त हो, परंतु सब निष्ठ, आप लोग हम लोग भी कुछ कुछ कभी ना कभी कुछ ना तो प्रार्थना तो करते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते, ये सब कुछ ना कुछ तो लालसा है, लालसा लेकर के यहाँ पर बैठे हुए, या जो जो भी यहाँ पर आए हैं एक जैसे भी लालसा लेकर के आए हैं, ये कृष्ण की प्रार्थना, और यदि जीवन भर ये नहीं मिला और अंत में मरते समय में दुख कष्ट हुआ उस समय क्या होगा बतलाओ, आदमी कैसे आस्तिक बना रहे। हमने सुना है साधारण गृहस्थ आदमी कह रहा था कि मेरी पत्नी बड़ी भाग्यवती थी, किसी बाबा जी की शिष्य थी, तो वो साधारण रूप में घर का काम करती, भजन करती थी, मरते समय 85 वर्ष की उम्र में 3 दिन पहले उन्होंने कहा जे भाई अब मैं तीसरे दिन यहाँ से चली जाऊँ। तो पति ने कहा जैसे तुम्हारा टूट जाने का लक्षण है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तो नहीं, आप समझ लीजिए मैं तीसरे दिन अब यहाँ से। उन्होंने विश्वास नहीं किया, भली चंगी और सब प्रकार से चल रही थी। उन्होंने फिर कहा जे एक बात करो, उस दिन सवेरे का तीसरे दिन उस के आसन कुछ ले आओ और कहीं से जमुना जी का पानी मिला। कहे तुम बावरी हो गई है? उन्होंने कहा जैसे मैं खाट, वो खाट पर थी बैठी, वो उतर करके और नीचे हो बैठे, मैं जब खाट पर मैं नहीं बैठूंगी, मैं नीचे ही उसका आसन लगा और भगवान का नाम लगा। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, बेकार की बात। और थोड़े देर के बाद उन लोगों ने देखा कि ऐसे चुपचाप बैठी हुई है, जब शरीर हिलाया तो देखा जो है देखो कैसे ये। और बड़े बड़े साधकों को देखते हैं कि अस्पताल में कराते हुए ऑपरेशन करता कराते हैं और क्या क्या कष्ट कितना क्या भी होता है, ऐसा भी देखा जाता। और उस समय में यदि कष्ट होता है, जो सारा जीवन हरिनाम किया साधन किया और उसको कष्ट झेलते हुए देखते हैं तो आस्था कभी कभी नहीं जाती। और कभी इन लोगों को देखते ही उत्साह से भर जाता है, ये साधारण सा ये भजन साधन करके सरल चित्त से किया और ऐसी इसकी गति हो।